पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र रूही की फोटो देखकर उससे बात करता है। वो मीटिंग के लिए जाता है। देवांश दिशा को वापस लाने के लिए एक योजना बनाता है। मयंक दिशा को होटल रंगमहल में बुलाता है, जहां उसे रिजाइन लेटर पर साइन करना है। पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र रूही की फोटो देखकर उससे बात करता है। वो मीटिंग के लिए जाता है। देवांश दिशा को वापस लाने के लिए एक योजना बनाता है। मयंक दिशा को होटल रंगमहल में बुलाता है, जहां उसे रिजाइन लेटर पर साइन करना है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 145। अब आगे रुद्र के ऑफिस में मीटिंग रूम के आने के बाद रुद्र सीधा अपने असिस्टेंट्स के साथ नीचे के फ्लोर पर चला जाता है, जहां सभी बेस्ट 10 मॉडल को सेलेक्ट किया गया था और वे सभी मॉडल अपनी अपनी जगह काफी फेमस थी। लेकिन फिर भी उन्हें मालूम था कि अगर उन्हें एक बार रुद्र सिंघानिया की कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया तो उनकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, और जो नाम, पैसा, इज्जत और रुकबा मिलेगा वे अलग। रुद्र उस फ्लोर पर जैसे ही आता है, वे सारी मॉडल जो रुद्र को अपनी खूबसूरती में दीवाना बनाना चाहती थीं, वे रुद्र की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देखकर खुद ही उसके चार्म में खोसी जाती हैं। उन्होंने सुना था कि रुद्र सिंघानिया काफी हैंडसम है, लेकिन आज रुद्र को अपने सामने देख उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया, क्योंकि रुद्र रियल लाइफ में फोटो के भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था, जिसे देख वे सारी मॉडल खुद को रुद्र में खोने से रोक नहीं पा रही थीं। वे सभी रुद्र को अपनी लालच भरी नज़रों से देखने लगती हैं। वहीं रुद्र उन मॉडल के पास आता है और उन सबको एक नज़र देखने के बाद अमन को कुछ इशारा करता है, जिसे समझ अमन उन सारी मॉडल को देखते हुए कहता है, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार मॉडल इस कंपनी के CEO खुद सेलेक्ट करेंगे, तो आप सब अपनी अपनी टैलेंट को बॉस के सामने प्रेजेंट कीजिए, जिसके बॉस को आप लोगों के टैलेंट के हिसाब से सबको सेलेक्ट करने में आसानी हो। अमन की बात सुनकर सारी मॉडल अपना सर हाँ में हिलाती हैं और एक एक कर सब रैंप वॉक करने लगती हैं। वे सारी मॉडल रैंप वॉक कम कर रही थीं और रुद्र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ज्यादा कर रही थीं। वे सब रुद्र को अट्रैक्ट करने के लिए कभी झुक जाती तो कभी अपनी ड्रेस को अपने कंधे से नीचे करने लगती तो कभी अपनी जीप को अट्रैक्टिव तरीके से अपने होठों पर फिराती। इसी तरह से वे अलग अलग तरीकों से रुद्र को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती। वहीं अमन जब उन सारी मॉडल की हरकतें देखता है तो उसका मन करता है कि वे जाकर अपना सर कहीं जोर से दे मारे, क्योंकि पता नहीं क्यों इस शैतान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वे सब लड़कियां वही हरकतें करती थीं, जिस वजह से उनके बॉस के अंदर का शैतान बाहर आ जाता था। अब उसे समझ में आया कि उसके बॉस तो इंसान ही थे, लेकिन लोग ही इस तरह की हरकतें करके उन्हें शैतान बनने पर मजबूर कर देते थे। वे उन सभी मॉडल की हरकतों को देखकर बस यही प्रार्थना कर रहा था कि अब इनके साथ जो होने वाला है, भगवान उसे सहने की उन्हें हिम्मत दे। वहीं रुद्र को बिना किसी भाव के उन सारी मॉडल की हरकतों को देख रहा था। जब उसे ये समझ में आ गया कि इनमें से कोई भी मॉडल अपने काम को लेकर पैशनेट नहीं है, बल्कि ये लोगों के बिस्तर गर्म करने के लिए परफेक्ट है, तो वे उन सभी को देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहता है, स्टॉप। रुद्र का इतना बोलना ही था कि सारी मॉडल अपनी जगह पर रुक जाती हैं। वहीं रुद्र उन सभी मॉडल को ना देखते हुए अमन को देख बोला, अमन, इन सभी को मेरा टाइम बर्बाद करने की वजह से इस इंडस्ट्री से निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि ऐसे लोगों का इस इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है जिनका ध्यान अपने काम में ना होकर कहीं और ही हो। इतना बोल वे वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख रुद्र की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ होटल रंगमहल, दिशा होटल रंगमहल पहुंचती है और फिर होटल के अंदर चली जाती हैं। मगर वे जैसे ही होटल के अंदर जाती हैं, वैसे ही उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि होटल के अंदर उसे कोई नहीं दिखता, जिसे देख वे खुद से कहती हैं, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई, ये होटल इतना बड़ा, फेमस और आलीशान है, इतने बड़े होटल में यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं है, शायद मयंक ने मुझे गलत एड्रेस दे दिया, मैं एक बार उसके फिर से पूछ लेती हूँ। इतना बोल वे जैसे ही अपना मोबाइल निकालने को हुई, वैसे ही वहां होटल का मैनेजर आ जाता है और दिशा को देखते हुए बोला, हेलो मैम, सर आपका ऊपर वाले फ्लोर पर इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। दिशा को मैनेजर का उसे यूं पर्सनली ट्रीट करना भी काफी अजीब लगा, क्योंकि वे ना तो कोई पैसे वाली लड़की थी, ना ही कोई सेलिब्रिटी जो मैनेजर उसे इस तरह ट्रीट करे, लेकिन फिर भी वे इस बातों को इग्नोर कर मैनेजर को देख बोली, आप एक काम कीजिए, मयंक को नीचे आने को ही बोल दीजिए, क्योंकि मुझे जल्दी में कहीं निकलना है, वैसे भी नीचे सारी शीट तो खाली ही है, तो मैं उसका यहीं इंतजार कर लेती हूँ, आप उसे इन्फॉर्म कर दीजिए। वैसे मुझे एक बात बताइए, ये आज होटल इतना खाली क्यों है? दिशा की बात और उसके सवाल दोनों को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वे दिशा को नहीं बता सकता था कि आज ये होटल खाली क्यों है, इसलिए वे अपनी आवाज़ को थोड़ा सा कठोर करते हुए कहता है, एक्चुअली मैम, आज कोई VIP गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए होटल को खाली करवाया गया है, और ऊपर सर की कोई मीटिंग चल रही है, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें आपके आने के बाद इन्फॉर्म करने और वहां तक पहुंचाने के लिए कहा गया था, इसलिए मैं बस वही कर रहा हूं, आप प्लीज अब मेरे साथ चलिए, हमें कस्टमर के लिए और भी तैयारियां करनी है। मैनेजर की बात सुनकर अब दिशा कुछ नहीं बोल पाती और सारी बातों को इग्नोर कर मैनेजर के साथ जाने के लिए मान जाती है, जिसे देख मैनेजर की सांस में सांस आती है और वे दिशा को ले प्राइवेट वीआईपी रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद मैनेजर दिशा को ले एक फ्लोर पर आता है तो दिशा देखती है कि इस फ्लोर को काफी अच्छे से सजाया गया है। दूर से ही देखने पर मालूम चल रहा था कि इस फ्लोर को सजाने में कितनी मेहनत और कितने पैसे लगे हुए थे। वहीं मैनेजर दिशा को इस फ्लोर पर लाने के बाद बेहद नरमी से बोला, मैम आपको इसके आगे खुद ही जाना होगा, एक्चुअली मुझे और भी काम है तो मुझे जाना होगा, आप बस यहाँ से सीधा सीधा चली जाइए, फिर आपको एक रूम दिखेगा, आप उस रूम में चली जाइएगा, सर आपको वहीं मिलेंगे। इतना बोल वे जैसे ही जाने को हुआ, दिशा उसे रोकते हुए बोली, मैनेजर सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो ये इतनी डेकोरेशन किस लिए? दिशा की बात सुनकर मैनेजर अपनी घबराहट छुपाने के लिए हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, मैम मैंने कहा ना वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, तो ये सब कुछ उन्हीं के लिए है।
इतना बोल वे अब बिना दिशा की आगे की कोई भी बात सुने वहां से चला जाता है। वहीं दिशा भी अब कुछ नहीं कहती और अपने कदम आगे बढ़ा देती है।